نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير سورة بقرة آيت نمبر 97 سے 103 97 سے 103 آج ہم اس میں آج کے دور کے بہت سارے مسائل کو دیکھیں گے کہ آج ہماری امت کیوں چیزوں میں چلی گئی اور آج کے سبق میں انشاءاللہ جادو اور جادو کی طرف لے جانے والی چیزوں پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی لیکن جو سب سے خوبصورت آیت ہے وہ پہلی آیت ہے آئیے شروع کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے جو لفظ جہاں جتنا بولوں اس کے اوپر غور فکر شروع کر دیں اور اس کے بعد پھر اگلے پہ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل کہہ دیجئے من کانا جو کوئی ہو عدوون دشمن لی جبریلا جبرائیل کے لیے تو اب آگے بات کچھ نہیں ہے یہاں تھوڑا سا لفظی وضاحت کرنا چاہوں گی قل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور قرآن پاک کے سارے قل قل نہیں کہہ رہی ذرا سا آپ تجوید کو بدلیں قل کیا ہے کہہ دیجئے سے اور قل کیا کھا لیں کتنا فرق ہے اور مزے کی بات ہے کہ آج قلوں کے نام پر کل کل ہی ہو رہا ہے ہر بات پہ کھا لو کل ہو رہے ہیں کھا لو اور اردو میں آپ سنتے ہیں کل ہر چیز مکمل کلو شی تو جب بولے تھوڑے سے شعور کے ساتھ بولے اور قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ قل آتا ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا لیکن اگر میں خود ایک کتاب لکھ رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو تو نہیں کہوں گی کہ کہو کوئی ڈکٹیٹ کرا رہا ہے نا جیسے آپ کسی کو کوئی کہے تو آپ نے کہ ریسیپشن پہ یہ بات کہہ دیں ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کہہ لیجئے کہ واسطہ بن جاتے ہیں لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے سے بات لاتے ہیں خیر من جو کوئی اب آپ دیکھیے لفظ ہے من تھوڑا سا لفظی وضاحت ہم دیکھتے ہیں نا اس وقت تو ماں لکھی اپنے پاس بہت جگہ پڑھا اپنے قرآن میں اور اس دفعہ جو تفسیر میں ہم خاص طور پہ لفظوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں تو اس کو آپ ذرا سا سمجھیے ماں کہتے بے جان چیز کو جیسے حجر شجر پتھر درخت زمین ماں بٹ یہاں کیا ہے من من کہتے ہیں عاقل کو اور دنیا میں تین مخلوقات عاقل ہے انسان جنات اور شیاطین بھی اسی میں آتے ہیں اور شیاطین کو لکھ لیجئے یا فرشتے لکھ لیجئے یعنی تین معروف مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں وہ عاقل ہیں آپ انسان کے بارے میں کہیں گے میرا تو جس سے واسطہ پڑا ہے وہ عاقل ہی نہیں ہے اس کی تو عقل نہیں چلتی تو جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کی عقل ہی مار دی ہے اس کی تو عقل اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے آپ کو چوز کیا تھا خیر یہ تو میرا آپ سے جوک تھا آپ شرمندہ نہ ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور میں نے دیکھا بعض بیویاں اپنے شوہروں کی جنت کا سامان کیسے کرتی ہیں کوئی غلطی ان سے ہو جائے نا کہتی ہیں اب پہلے ادھر ادھر ڈھونڈتی ہیں ان کا کدھر قصور ہے یہ کیا انہوں نے پھیلایا کچھ انہوں نے برتن نہیں اٹھائے انہوں نے چادر خراب کر دی جب کچھ نہ ملے تو کہتی ہیں تسی میری مت مار دیتی ہے آپ نے تو میری عقل ہی مار دی یعنی قصور پھر اخیر میں آپ کا ہی نکلا تو میاں کہتے ہیں بیگم میں قائل ہوں میں بالکل وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میرا ہی بڑا قصور ہے میں نے ہی غلط فیصلہ کیا میری بھی عقل بس ایک ہی دن ماری گئی تھی تو عقل ہوتی ہے جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں نا اس جوک میں وہ کیا ہے اچھی عقل ہو کہ بری عقل کہتے ہیں جو عقل استعمال کر سکے آپ اپنے بچوں کو دن میں شاید 10 دفعہ کہتی ہوں گی تمہیں عقل نہیں ہے بٹ اس کا غلط کام کرنا بھی عقل کی دلیل ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ فرشتوں کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے فرشتوں میں عقل کیوں نہیں ہے کیسے ہے تو مجھے پیچھے والی بات سے جواب دیجیے کیا پوچھا تھا فرشتوں نے جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجل فیہا من یفسد اب عقل تھی تو سوچا نا تو فرشتے بھی عاقل ہے بٹ فرق کیا انسان کی عقل اس کے ارادے کے ساتھ جوڑ دی لیکن فرشتوں سے ارادہ چھین لیا اب یہ ایک بڑی بات ہے اس کو چھوڑ دے ایک لیکچر بھی ہے بہت پرانا عقل سے ارادوں تک تو انسان کی عقل کے بعد اس کو یس نو کہنے کا اللہ نے حق دیا فرشتوں کو نہیں دیا رہ گئے شیاطین ڈیولز تو وہ اپنی عقل کو ہمیشہ نیگیٹو ہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں من کہہ کے جاندار چیزوں کی بات ہے ठीक है, पत्थरों को, दरख्तों को अल्लाह ने ये सोच ही नहीं दी कि वो अपने अच्छे बुरे को सोचे, उसको आग में भी जाके डाल रहा होता है तो दरख्त का तना नहीं बोलता। खैर आगे, काना, अब तो मेरे लिए आपको रट जाना चाहिए काना क्या है, बोलेगा कोई? काना यकूनो कानू, क्या है ये काना, क्या बताता है? जहां भी जितने कुरान में काना है वो क्या है? इंग्लिश की बोल दें टेंस, माजी इस्तमरारी उर्दू होती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, किसी काम का मुसलसल होना। ठीक है, अब यहां लफ्ज देखिए, आप लफ्जों में खोएंगे ना सब गम भूल जाएंगे अपने जाती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर वही घर वाले याद आ जाते हैं कि उनकी सारी गलतियां भूल जाएंगे जब आपका कुरान करीम पर गौर फिक्र हो जाएगा। तो काना से मुराद है, था और रहेगा, बस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जहन में रख लें तो कुरान के आज जाके सारे काना को खोलें तो इसका मानी पे बहुत गहरा असर है। अच्छा, काना की जरूरत कोई नहीं होती, कुल मन अदूबल लि जिब्रील, दैट्स फाइन, इज वेरी गुड तरकीब, बट काना कहकर मदीना के यहूद को बता दिया, जिनके सामने ये आयतें उतर रही हैं, कि तुम्हारे इंसेस्टर्स यानी तुम्हारे अबाओ अजदाद जिस रविश पे थे तुम आज तक उसी पे कायम हो, और अगर आज के दौर में मैं और आप पढ़ पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे अल्लाह जी आज भी ऐसा ही है। तो आप नोट करेंगे कि बनी इसराइल पर तबसरों के दौरान कसरत से काना का लफ्ज आया है, आप पीछे हर लेसन में तकरीबन इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या पता चला कि तुम्हारी रविश नहीं बदली। जैसे आप कहते हैं ना कि हैबिट्स कैन बी चेंज बट नेचर कैन बी चेंज, किसी की आदत तो बदली जा सकती है लेकिन उसकी नेचर नहीं बदली जाती, तो कुछ लोगों का यही हाल होता है। खैर आगे देखते हैं, अदूबन दुश्मन, अदुव का लफ्ज आज थोड़ा सा आपके सामने खोलूंगी क्योंकि आज इस आयत का मेन थीम ही दुश्मनी है। अदुव का लफ्ज हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? दुश्मन। अरबी जुबान में दुश्मन के लिए मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं, यानी दुश्मन या दुश्मनी का जिक्र करने के लिए एक लफ्ज तो है यही जो मेरे आपके सामने, अदुव, इसकी जमा होती है आदा, आदा अल्लाह ही, सूरत हामीम सजदा में जब अल्लाह के दुश्मनों को आग पे खड़ा किया जाएगा, इशारा दे दूं तो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह वाली आयतों से पहले की आयतें सूरह हामिम सजदा में ये लफ्ज़ मौजूद है, आदा इसकी दुश्मन होती है। अदूफ कहते हैं ऐसा दुश्मन जो बदख्वाह हो, यानी एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश में वेल विशर, तो अदूफ क्या है, वेल को ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा, क्या विश करता है वो आपके लिए, वेल ना मिले आपको बल्कि रॉन्ग विशर, यानी जो आपका बदख्वाबी हो, बुराई और नुकसान की बात सोचने वाला, ये दूसरा दर्जा इसका। और तीसरी इसकी आदत क्या होती है, तकलीफ पर खुश होने वाला, अस्तग़फिरुल्लाह, इसकी जिद क्या है, खुश हो जाएंगे सुनकर अगर नहीं पता तो, सिद्दीक, तो अदूब का अपोजिट सिद्दीक है। और अरबी जुबान की खूबी आप जानते हैं कि चीजों को उसकी जिद, उसके अपोजिट से हम जानते हैं, इसकी जिद सिद्दीक है। कुरान पाक में किसको अदुव कहा गया बार बार? नंबर एक शैतान को, लिखिए आपके पास कुरान में ये मौजूद है सूरत अल अराफ की आयत 22 में, इन्न शैतान लकुमा अदुव मुबीन। तो अब आज आपको समझ आइए कि शैतान को अदुव क्यों कहा गया। अब मुझे इजाजत दीजिए ये सारे जुमले में शैतान के लिए बोलूं कि शैतान इंसान का बदख्वाह है, लिखे शैतान इंसान को बुराई और नुकसान की बातें देना चाहता है, शैतान इंसान की तकलीफों पर खुश होता है, और जिसने शैतान को अदुव बना लिया या जिसका शैतान अदुव बन गया ना, तो वो फिर अल्लाह को सिद्दीक या फिर नेक लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता। इसी से लफ्ज़ फिर अदावत भी है, दुश्मनी और बदख्वाही, और लिखेगा ये दुश्मनी का पहला दर्जा होता है, फर्स्ट लेवल, और किसी की नुसरत से हट जाने को भी अदावत कहते हैं, ये भी आगे लफ्ज आएगा क्योंकि इस सबक में इसी अदावत का ही जिक्र है। फिर इसी तरह अरबी जबान में दुश्मनी या दुश्मन के लिए लफ्ज बुगज आता है, बगदा, बुगज की जमा है ये हुब, हुब की जिद है, मैं उसकी डिटेल्स नहीं बताती आप घबरा जाएंगे, लेकिन नाम नोट कर लें कि यहां ये क्यों आया, कुल मन काना अदू वल्ली जिब्रील, ये भी कहा जा सकता था मन काना शान, शान का लफ्ज भी होता है, इन्ना आतेना कल कौसर, आगे आखिर में क्या आता है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, तो शान भी दुश्मनी को कहते हैं, और याद रखिए शान तीसरे दर्जे की दुश्मनी है। ये आप सूरत कौसर तक सबर करें तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स आपको लिखाऊंगी, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये आपके सामने सूरत माईदा की आयत 8 में भी आएगा, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे मायल ना करे। फिर इसी तरह से बगदाबिया, तो कहने का मतलब यहाँ सारी बात के बाद क्या बना कि शैतान हमारा दुश्मन है। और अदूव का लफ्ज़, अच्छा अदूव के लफ्ज़ में भागना भी होता है, अब इसको भी नोट करें, दुश्मन से इंसान भागता है। नफरा के मानों में भी अदूव का लफ्ज़ आता है। आप कह सकते हैं बड़े ही न समझ हैं वो लोग जो दुश्मन की तरफ भागे। दुश्मन कौन है? शैतान। तो क्या अमूमी तौर पे मैं शैतान से भागती हूँ या शैतान की तरफ भागती हूँ? शैतान की बहुत बड़ी दुश्मनी इंसान के साथ क्या होती है कि वो उसको ये एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इतनी बात काफ़ी है, वरना आप परेशान हो जाएंगे। क्या पता चला, मन का ना अदूवन, जो कोई हो अदू। अब यहाँ शैतान की बात नहीं है बल्कि बात है अदू की। अच्छा खैर, जो अदू हो किसका? ली जिबरीला, ली वास्ते, जिब्र, जिब्र का लफ्ज़ अब आपको ज़ुबानी याद हो गया होगा। जिबर, मीका, इज़रा, जितने भी नाम फरिश्तों के नाम के साथ जानते हैं ना, सब का एक ही मतलब है, अब्दुल्ला। अरबी ज़ुबान में जैसे लफ्ज़ अब्दुल्ला है ना, तो ये सुरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सीरियन लैंग्वेज है। जिब्र कहते हैं बंदे को और ईल कहते हैं अल्लाह को। यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आपका दिल चाहे ना करे तो मैं आपको मजबूर नहीं करती, लेकिन हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं? जिब्राइल, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। यहाँ क्या है, ऐसे नहीं लग रहा कि हम अक्सर जो पंजाबी के स्टाइल में अरबी पढ़ते हैं यहाँ वो लफ्ज़ हैं। और इसी आयत के एंड पे फिर देखिए, वह जिबरील व मी काल, तो असल प्रोनाउंसिएशन इसका फिर जिबर है। हम ईल आईल थोड़ा सा उसके प्रोनाउंसिएशन को फर्क करके पढ़ते हैं। खैर आगे देख लेते हैं, मन काना अदुवल जिब्रील, यहाँ थोड़ी सी इसकी भी वजाहत समझ लीजिए कि जिब्राइल को जिब्राइल क्यों कहते हैं। क्योंकि नंबर एक, हर फरिश्ते की तरह ये अल्लाह के बंदे हैं। हम सोचते हैं फरिश्ते कोई और मखलूक है, हालांकि फरिश्ते भी अल्लाह के बंदे हैं, यानी वो अल्लाह की बंदगी के रंग में रंगे हुए हैं। और जिब्राइल फरिश्तों के सरदार है, मैंने कल के सबक में भी जिक्र किया था, आज फिर भी इंशाल्लाह करती हूँ, आप फरमाइश कर दीजिएगा कभी कि सिर्फ आपको जिब्राइल पे एक लेक्चर दूँ। इतनी इनकी खूबियाँ हैं, ये रूह हैं, बंदों के जिस्म की रूह भी ये है और दिलों की रूह यानी कुरान और वही की रूह भी यही है। खैर अल्लाह ताला ने एक बात कह दी, इनसे कह दें जो जिब्राइल का दुश्मन है, फ़इन्नहू, पस बेशक वो, फा पस, इन्ना अलबत्ता, हु वो, हु से यहाँ कौन मुराद है? जिब्रील, ठीक है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनको लोग अपना दुश्मन कह रहे हैं, तो उनको ये बात बता दो कि उस जिब्राइल का क्या इख्तियार है। फ़इन्नहू, पस बेशक वो, फा लफ्ज़ देखिए ना, अगर इसकी ज़रूरत नहीं थी इन्नहू भी काफ़ी था। यहाँ एक और लफ्ज़ है, इंग्लिश में दो लफ्ज़ बोलने की इजाज़त दें, एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। पिछले सबक में इसकी बड़ी खूबसूरत तरकीब थी जो मैंने स्किप कर दी कि आपके लिए बड़ी मुश्किल ना बात हो जाए, लेकिन आम तौर पे हम क्या कहते हैं, मसलन मैं आपको उर्दू में बताती हूँ, आप कहते हैं कि असलम मेरा छोटा भाई है, वो सुबह उठता है, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है। शुरू में क्या बोला आपने? असलम। बाद में क्या बोला बार बार उसकी जगह? वो। ये नहीं कहा कि असलम मेरा छोटा भाई है, असलम सुबह उठता है, असलम असलम। तो असलम क्या है? नाउन, इस्म। तो वो जो मैं कह रही थी ना, ये प्रोनाउन है, इंग्लिश में उसको प्रोनाउन और आप उर्दू में कह लीजिए ज़मीर। अब यहां आप देखिए, फ इन्नहू, पस बेशक वो, हु क्या? जिब्राइल। ये आयत आमतौर पे कैसे भी हो सकती थी, फइन्ना जिब्राइला नज़ला हु। अब हु से अब कुरान कितना बोझिल हो जाता, जरा आप नोट करें ना कि ये जो अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल की, हालांकि पीछे यहूद के किस्से जो हमने पढ़े बिल्कुल इसके पीछे की आयत है, अगर आप थोड़ा सा पलट के देखें तो आपको अल्लाह ताला की ये बात दिखेगी कि उन्होंने इससे ऑपोजिट वे इस्तेमाल किया था। मेरा हाल छोड़ देती हूँ वरना आप परेशान होंगे, इधर ही आ जाइए कि जिब्राइल का मुकाम क्या है कि वो नज़लहू, नाजिल करता है इसको। किसको? नज़ला, वो नाजिल करता है। आप देखिए लफ्ज़ नज़ला को भी थोड़ा सा समझें, आपकी साउंड के लिए आमतौर पे हम सभी पढ़ते हैं इन्ना अनजल ना हो, अनजला भी पढ़ते हैं और यहां क्या है नजला, फर्क क्या है? अनजला का मानी के उसने नाजिल किया, मगर कैसे? सारा इकट्ठा कर दिया, यानी किसी ने एक ग्लास पकड़ा और आपके सर पे फेंक दिया, उंडेल दिया, यह अनजला हो गया। और नजला क्या है? वो ग्लास पकड़ के ना ऐसे कतरा कतरा ऊपर डाला, 5-6 मिनट लगे। नजला में थोड़ा थोड़ा डालना। नजला यो नजिलु तंजील। कुराने पाक के बारे में ये जो 23 साल का लफ्ज हम बोलते हैं ना, तकरीबन 22 महीने, 22 साल और 6-7 महीने बनते हैं टोटल ड्यूरेशन, लेकिन हम उसको 23 साल कहते हैं। तो वो नजला क्यों है? कि कुरान पूरा का पूरा एकदम नहीं आपके ऊपर उंडेला गया, और आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये तरकीब है, और ये आपके इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की दलील भी है। दौरे कुरान में आपके ऊपर क्या होता है? अनजला, रोज का एक पारा उंडेला जाता है। तेज बारिश होती है, एकदम जलथल बहुत होता है, इसलिए मैंने देखा है दौरे कुरान के दौरान दिल बहुत खुल जाते हैं, लेकिन वो ईद की पार्टियों में सब पानी सूख जाता है, और फिर उसके बाद छुट्टियां आ जाएं तो मौत हो गई कुरान की क्लासेस की, और उसके बाद कुछ लोग हज पे चले जाएं तो बस समझें कि और ही दूरियां बढ़ गई। जितनी जल्दी असर होता है ना कुरान का, उतनी जल्दी चला जाता है। इसके बरक्स आप कुरान ले रहे हैं, रूहुल कुरान है, कुछ लोग सबीलुल जन्ना लेते हैं, कुछ सबीलुल खुदा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबक आपके ऊपर डलता है। बज़ाहिर आपको लगता है मैं चेंज नहीं आ रहा हमारे अंदर, लेकिन वक्त के साथ आप देखेंगे कि ये रंग पक्का होगा। आहिस्ता आहिस्ता जो कपड़ा रंगा जाता है उसका रंग ज़्यादा आता है। मेहंदी थोड़ी थोड़ी करके रचे, सारी रात लगी रहने दे तो उसका रंग गहरा होगा, बजाय इसके वो जो आजकल ठप्पे वाली मेहंदी हैं कि आप लगा के बैठे, थोड़ी देर बाद धो लें साफ रंग, लेकिन दूसरे ही दिन वो ऊपर से खरीपड़ उतर जाते हैं। तो ये कुरान की खूबी यहाँ आप लिखिएगा कि कुरान थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाता रहता है तो फिर ही इसका असर आता है। खैर, नज़ला हू, वो इसको नाजिल करता है, तो हू से क्या मुराद है? यही कुरान जिसके लिए तुम दुश्मन बने बैठे हो, अला कल्बी का, ऊपर तेरे दिल के। यहाँ कल्बी का में का कौन है? ये वही है जिसको शुरू में कुल कहा गया नबी सल्लम। अब इसके पीछे वाक्या है, अभी शेयर करती हूँ, लेकिन हम जरा से लफ्जों से अब दोस्ती कर ले। कहा कि वो इस कुरान को आपके दिल पे नाजिल करता है। चलिए एक और खूबसूरत लफ्ज है हमारे सामने, कल्ब। अरबी जुबान में दिल के लिए मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं, मसलन यहाँ एक लफ्ज आ गया कल्ब। कल्ब बड़ा मशहूर उज्व है जिस्म का, और कहना चाहिए कि दिल ने ही मुश्किल डाली हुई है फिल्मों वालों को भी और जवानों को भी और बूढ़ों को भी, आजकल उन्होंने मुश्किल डाल दी है। सारी जवानी गुजरने के बाद उनको समझ आया कि दिल भी रखते थे, चलो अब हम भी जाने से पहले दुनिया से कुछ दिल को खुश कर लें। लेकिन कल्ब कहते हैं रूह और हयात के मंबे को, यानी जिसके वजह से जिंदगी और आपकी रूह कायम है। इसकी जमा होती है कुलूब, अकल, फहम, सोच, फिक्र, चार चीजें लिखी हैं। कल्ब जहां भी आएगा ना, अकल, फहम, सोच, फिक्र के लिए अल्लाह ने कुरान में कल्ब को मुखातिब किया है। यानी आज आप देखिए कि डॉक्टर्स या फिर तबीब अकल कहाँ कहते हैं? दिमाग में। हम कहते हैं अकल नहीं, तो उस वक्त हम लोगों के दिमाग की तरफ इशारा करते हैं, दिल की तरफ नहीं है। हालांकि कुरान ने क्या कहा? लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, सूरत अल आराफ आयत नंबर 179 है। बड़ी स्केरी आयतें हैं कि इनके दिल तो हैं मगर ये उससे समझने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ लफ्ज कल्ब है, और कल्ब मोहम्मद वो बर्तन है जिसमें वही का पानी उंडेला गया, इस पर हम बात करेंगे भी। लेकिन कुछ और नाम लिख लें सिर्फ दिल के, और अपनी अपनी जगह पे जब आएंगे तो उसकी डिटेल्स आएंगी। फुआद, कुरान में फुआद का लफ्ज सूरह बनी इसराइल में आया है, इन नसम अवल बसर अवल फुआद कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला। अब यहां कल्ब आ गया, वहां जाके फुआद दे दिया, तो आपको फर्क पता चलेगा कि यहां अकल की बात थी, वहां जज्बात की बात है। फुआद में जज्बे होते हैं, इमोशनल पार्ट ऑफ द हार्ट। डॉक्टरों से भी पूछिए तो आज हमारे दिलों के अंदर डिफरेंट हिस्से होते हैं। इसी तरह सदर का लफ्ज आता है, सदर ये पाकिस्तान के सदर नहीं है बल्कि सदर सीना, सुदूर जिसकी जमा, ये भी लफ्ज अपनी जगह पे आएगा तो हम देखेंगे। फिर इसी तरह नफ्स, नफ्स भी दिल को कहते हैं, तुख्फी फी नफ्सी का मल्लाह मुबदी ही, सूरत अहज़ाब आयत 37 में, कि आप तो अपने दिल में कुछ छुपा रहे थे और अल्लाह उसको खोल रहे थे, और इसका ताल्लुक ख्वाहिशात नफ्स से होता है। तो यहां बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ थोड़ी सांस में सांस आई, क्योंकि अभी तक तो ऐसे लग रहा था कि कुरान का सारा सिरा जो है वो जिब्राइल के हाथ में, कहानी जिब्राइल इज जस्ट लाइक अ कन्वेयर, जिब्राइल इज जस्ट लाइक अ मैसेंजर, जिब्राइल सिर्फ एक जरिया है, ये सब कुछ कैसे होता है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा अब इधर देखिए, आप नोट कर रहे हैं कि जहां से ये बनी इसराइल के उलमा पर तनकीद है ना, आयतें बड़ी लंबी हैं, आप थक जाते हैं एक आयत को पढ़ते पढ़ाते, आगे जाके आप पढ़ेंगे छोटी छोटी आयतें आएंगी कुरान में ना, वह ज़ारियाति ज़रवा खत्म, आयत इतनी बड़ी है, वह नजमी ज़ा हवा खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लंबी आयतें असल में एक गहरे गुस्से और ग्रज का जिक्र है। अगर अभी तक देखे ना, तो मैंने अभी तक क्या आपसे जिक्र किया कि जो कोई जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, तो गोया कि इस आयत में कोई दुश्मनियों की बात है। दूसरी बात, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, ये दूसरी बात हो गई कि कुरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल होते हैं, ये दूसरा टॉपिक होगा आयत का। आगे देखें ना, तो तीसरी बात अब इसी की आयत से शुरू हो रही है, और वो क्या है, कुरान क्या है, ये जिस कुरान को नहीं मान रहे या जिस नबी की नबूवत पे इनको शक है, तो मुसद्दिकन ये सच्चा करने वाला है, वेरीफाइंग तस्दीक करने वाला, लफ्ज़ क्या है इसके अंदर छुपा हुआ, बोलिए शाबाश, स्वाद दाल कफ सिद्क, सादिक एक लफ्ज़ होता है ना, खुद सच बोलने वाला, जैसे नबी सल्लम सादिक और अमीन थे, यहाँ क्या है मुसद्दिक, किसी दूसरे को सच्चा कहने वाला। मिसाल दूँ छोटी सी, खुद नबी सल्लम सादिक थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक कौन थे, वो मुसद्दिक थे, किसके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये कुरान क्या कर रहा है, मुसद्दिकन तस्दीक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, सच्चा साबित कर रहा है, किसको, लीमा वास्ते उसके, जो ये लीमा का भी लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, इस वक्त इसकी डिटेल्स नहीं देती, आगे चले, लीमा बस इतना समझ लें, उसके लिए जो, ली वास्ते माँ जो, बई न या दई ही, इनके दोनों हाथों के बीच में, अगर आप लफ्जी तर्जमा देखें ना, तो माँ मैंने जो, बईना दरमियान, ये दई ही, इन दोनों के जो लफ्ज है ना, ये दई ही, ये असल में क्या था, यदैन, या दाल या यद कहते हैं एक हाथ को, तो यदैन उसका तस्निया दो हाथ, तो दो हाथों के बीच में क्या चीज है, मसलन आप देखिए जैसे ये वॉलेट है ना, तो अब ये किधर है, अगर मैं इसको पकड़ूं ये कैसे, ये मेरे दोनों हाथों, तो जब मेरे दोनों हाथों के हैं तो मेरे सामने है ना, तो माँ बहिना या दही ही का मतलब क्या, जो उनके दोनों हाथों में, मुराद के इनके सामने है, इन फ्रंट ऑफ देम के मानों में, कुरान जो इनके सामने है वो मुसद्दिक है, पहली खूबी कुरान की इस आयत में क्या आई, मुसद्दिक, दूसरी देखिएगा वह हुदन और हिदायत, हुदन यहां मबानी हादी, राह दिखाने वाला, गाइड करने वाला, वह बुशरा और खुशखबरियां देने वाला, बशर कहते हैं खाल को, स्किन, चेहरे को बशर कहते हैं, आप पढ़ेंगे सूरत मारिज की शायद आयत है, नज़ात लिल बशर, तो बशर जिस चेहरे की खाल है इसको कहते हैं, तो बुशरा उस खुशखबरी को कहते हैं जिसका चेहरे पे असर पड़े, कोई अच्छी सी खबर सुनी हो तो हंसी नहीं छुटती ना, चेहरे पे एक रंग आता है और एक जाता है, दूसरों को कह रहे होंगे कि किसी को ना बताना, लेकिन खुद अपने से संभाला नहीं जाता, यही कैफियत है ना, तो बुशरा खुशखबरी है, मगर किन को, सब खुश ना हो बल्कि लिल मोमिनीन, ईमान वालों को, ये निकल लिल मुस्लिमीन, नोट करें, या फिर वो इस्लाम के तीन दर्जे आएंगे जो पीछे आपको जिक्र किया था, दिल की तीन हालतों पे, सुम्मा कसत में, लिल मोमिनीन, ये आयत कैसे हो सकती थी, लिल मुस्लिमीन, लिल मोमिनीन, लिल मुहसिनीन, ऐसा नहीं है, ईमान का दर्जा दूसरा होता है, तीन स्टेप में बंदे के दिल पर ईमान का रंग चढ़ता है, पहले मुस्लिम बनता है, शुरू में कुरान बुशरा कोई नहीं लगता, सच्ची जो बात है, जैसे आप में से उन सिस्टर्स को बिल्कुल नहीं लग रहा इस वक्त जो बिल्कुल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कुरान पढ़ने लगी हैं, खौफ नहीं आ रहा, ये भी खराबी मेरे में, मैं इसमें भी खराब हूं, मैं पढ़ती नहीं हूं, सच बताएं, शुरू में जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो डॉक्टर की दुकान पर बैठे हुए मरीज की तरह, जिसको दूसरों की हर बीमारी अपनी बीमारी दिखती है, हर सिम्टम उसको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे है, वैसे आप देखेंगे कुरान पहली दफ़ा पढ़ें तो वल्ला ही सब खुशफहमियाँ निकल जाती हैं। ये बड़ा रोमांटिसाइज करते थे, कुरान पढ़ें तो इतना मज़ा आता है, कुरान दिल की बहार, कुरान से दिल खुश, हमारा तो जीना दोब्बर हो गया। हमें तो ख्वाब में भी अब पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब चीज़ें नज़र आती हैं। डर लगता है, स्केरी लगता है बंदे को, क्योंकि चेहरा बड़ा गंदा होता है ना। आपके अपने अंदर कोई है ही नहीं है खूबियाँ। चेहरा काला है तो शीशे में देखेंगे तो गुस्सा तो आएगा, दाग पड़े हैं, धब्बे पड़े हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आप फिर अपनी गंदगियों को हटाते हैं, आप अपने अंदर से अखलाकी खराबियाँ निकालते हैं, आप अपने चलने फिरने को दुरुस्त करते हैं, आप अपने दिल दिमाग को खोलते हैं। एक वक्त आता है कि आप पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके होते हैं। ये मैं मानती हूँ कि हम में से कोई मुकम्मल बेहतर कभी नहीं हो सकता, लेकिन कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ा रहे ना, तो कम से कम बंदे को अपनी खराबियां नजर आती रहती हैं। तो फिर एक दर्जा आता है ईमान का, ये वहां मौजूद है, ये बीज का इंटरफेस होता है। नोट करें इसको, शुरू में कुरान पढ़ के बंदा बहुत डरता है, इसीलिए मैंने देखा है नए स्टूडेंट्स या पहली दफा पढ़ने वाले रोते हैं, और उनका रोना मैं कहती हूँ हमारे पढ़ाने वालों के लिए एक कैटलिस्ट होता है, और रोने को दिल करता है और बताने को दिल करता है, माहौल ही ऐसा बन जाता है। लेकिन जो दूसरी बार पढ़ते हैं ना, वो कोई नहीं रोते, फिर उनको रोना नहीं आता, वो टैली कर रहे होते हैं, शायद पहले से बेहतर हो गए। इसलिए याद रखिए, गुनाह करके आया हुआ बंदा जो कुरान सुन के असर ले रहा होता है ना, नेकियां करके आया हुआ कोई नहीं ले रहा होता, वो अपने कंधे थपथपा रहा होता है। तो ईमान के दर्जे पे कुरान बुशरा बन जाता है। चलो जी, दूसरों से तो अच्छे हैं ना, चलो क्या हुआ अगर खराबियां हैं हमारे अंदर, लेकिन हम खिदमत नहीं इतनी दीन की करते, और क्या फर्क पड़ता है। हमें पता है भी हमारा जीना मरना ठीक नहीं हुआ, लेकिन चलो जी हम कुरान पढ़ा तो रहे हैं ना, समझ आइए। और ये बहुत खतरनाक फेज होता है, लेकिन इस हद तक कुरान किसी न किसी तरह आपको खुशियां देता है। इसके बाद एक अगला दर्जा आएगा लिल मुहसिनीन, ये फिर ऑपोजिट वे पे चल पड़ते हैं, सहाबा थे जैसे, पहला ही इस्लाम फिर ईमान। ईमान तक बड़ा अच्छा है, बहुत सारे लोग सारी जिंदगी ईमान तक ही रहते हैं, वो खुश रह जाते हैं, बट जब मोहसिन के दर्जे पे इस्लाम आता है ना, फिर बंदे को लगता है दुनिया में सबसे बुरा मैं ही हूँ, क्योंकि नेमतें बहुत मिल चुकी होती है ना। आप सोच लें, तीसरी बार कुरान सुनने का मौका मिल गया, तीसरी दफा पढ़ने का पढ़ाने का मौका मिल गया, अब बंदे के अंदर एक ऐसी अलार्मिंग कैफियत पैदा होती है, वो कहता है सारी दुनिया को बता के तो खुद अमल नहीं करेगी, सब तुझे अब पहले से बहुत अच्छा समझने लग गए हैं, बट तू अभी वैसी नहीं है। तो ये जो ईमान का लफ्ज़ है ना लिल मोमिनीन, ये बहुत ज़्यादा जुमानी लफ्ज़ है, कि कुरान से थोड़ा सा ताल्लुक जुड़ जाए तो फिर वो डरावे कम हो जाते हैं। बंदा कहता है नहीं, मुझे अल्लाह ने माफ़ करना है। मैं किसी सिस्टर के साथ बैठी थी, तो वो बात कर रही थी अपनी, और मैंने उनकी बातों से ये रंग देखा है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करती हैं। तो कहने लगी, मैं अल्लाह से बात करते हुए कहती हूँ मुझे पता है तूने मुझे बख्श देना है, क्यों? क्योंकि मुझे तुझसे प्यार बड़ा है। अब उनका लाड था ना, लेकिन ये है बुशरा लिल मोमिनीन, एक तरफ अपने गुनाह दिखते हैं ना, तो दूसरी तरफ अपनी नेकियां भी दिखती हैं। अब इस आयत को तो हमने थोड़ा सा जांच लिया, इसकी अगली आयत साथ लेकर ही वाकया सुना सकूंगी, इसलिए अगली आयत पे चलिए।